जीवन के बंद कमल के खिलौने में से भी हमें एक योग्यता लेकर के आना चाहिए कि उसकी आना हमारे जीवन के कमल को विकसित कर दे और जिसका जीवन का कमल खिल जाता है। सूर्य के निकलते ही कमल खिलते हैं और खुशबू बिखेर देते हैं, चारों ओर का वातावरण सुगंधित से भर जाता है। यदि परमात्मा की यह आभा हमारे जीवन कमल तक पहुंचती है तो वह भी खिल उठ सकता है और हमारे अंदर की जो सुगंधि वो फूट पड़ेगी, जो हमें भी आनंद देगी और समीप में रहने वाले लोगों को भी आनंद प्राप्त कराएगी। ध्यान रखना, जो आर्टिफिशियल तरीके से खिलाया गया कमल दिखने में तो आ सकता है कि कमल खुला होता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उसमें से कोई सुगंधि नहीं आएगी। सुगंधि उसमें से आएगी जो यथार्थ खिला है, जिसे इतनी पात्रा योग्यता थी कि उस आहा से प्रफुल्ल खिल गया। ऐसे यदि कोई परमात्मा रूपी सूर्य के बिना अपने जीवन की कमल को कोई आर्टिफिशियल तरीके से यदि विकसित करना चाहे, खिलाना चाहे, तो देखने में ऐसा लग सकता है कि हमारा जीवन रूपी कमल खिल गया है, लेकिन उसमें से कोई आत्मा की आनंद की सुगंध नहीं आ सकती है। हर व्यक्ति परमात्मा बनने के लिए उत्सुक है, इसीलिए परमात्मा के फूल चरणों में जाता है। कबीर ने एक दोहा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। भले आप कहेंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कबीर की वाणी है वो, लेकिन जो कहा गया है वो अच्छा लगा मुझे। दासो मन रटता चला, दासो मन रटता चला प्रभु मंदिर के पास, दर्शन कर दा मिट गया, सोहम रहा प्रकाश। आज हम परमात्मा के पास पहुंचने के पहले ही सोहम सोहम की ध्वन लगा लेते हैं, सोहम सो हम जो आगे मधुरन नहीं तो। लेकिन कभी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दासो हम, मैं दास हूं मधुरन। किसका? आपके स्त्री चरणों का दास हूं, आपने जो लक्ष्मी प्राप्त कर ली उस लक्ष्मी का दास हूं, आपने जो उपलब्धियां प्राप्त कर ली है वो अवनत और उपलब्धियों का दास हूं मैं। सोहम का गीत गाने से सोहम की उपलब्धि नहीं हो सकती है। परमात्मा के कभी सोहम की आवश्यकता नहीं हुआ करती, परमात्मा का कभी जानने वाला तो दासोहन होगा। जो दासोहन की नसीहत में पहुंचता है वही व्यक्ति परमात्मा के लिए प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रख करके और अपने कल्याण के मार्ग खोज पाता है। सोहम सोहम मैं रहा, साका हुआ रुमा, सोहम सोहम मैं रहा, साका हुआ रुमा, अहम अहम बस रह गया प्रभु चैतन्य प्रकाश। जो दासोहन बनकर के परमात्मा के समीप जाते हैं उनका दाह समाप्त हो जाता है तो सोहम सिर्फ बचता है। परमात्मा को देखने के बाद उनकी विकराल छवि को देखने के उपरांत हमें ऐसा लगने लगता है कि भगवान सो हम आत्म कल्याण के लिए परमात्मा की ही उतनी सीमा है। सीमा पर अन्य कोई आगे नहीं, आपको हाथ नहीं लगा सकता। अपनी सीमा और मर्यादाओं में भी कोई ना कोई निमित्त रहते हैं, मर्यादाओं को उल्लंघन कर निमित्त कभी नहीं करते। परमात्मा भी हमारे लिए कल्याण में निमित्त है, लेकिन उनकी एक अपनी सीमा है, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करते। सोहम सकता है समझ आपके साथ रह सकते हैं, जितने लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सोहम सोहम, और जब आप आनंद में उतर जाएंगे तो सह नहीं होगा, वहां परमात्मा नहीं होगी, वहां आत्मा होगी, वहां हम होंगे, वहां मैं होगा, आनंद क्योंकि अन्य कौन सी चीज है जो आदमी को लकड़ी की तरह इतना स्ट्रिक्ट बना देता है, सीधा बना देता है, कोई झुका नहीं सकता। कहीं आप हमको अन्य को नहीं बोले, सोनंदा दूध बनाने के बाद किसी अहम के अहंकार में भी हम दूध बनाएंगे तो हम अपने अहम को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान रखना, यह अहम को आकर अपने आत्मा से है। उसे हम नहीं कह रहे हैं कि अहम में भूलने वाले लोग अगर बाहरी जगह में पर पदार्थ में इतने गाजे हो जाते हैं कि उन्हें अपना सर्वस्व मान रहते हैं, उन्हें ताकत और अवनतर मान रहते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ये हमारा अहंकार है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए तो परमात्मा के पास जाते हैं और हमारा अहंकार टूटेगा नहीं रहता। जाने के बाद आप क्या करते हैं, सीधे खड़े रहते हैं क्या? नहीं, परमात्मा के सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति सीधा नहीं खड़ा रह सकता, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो। वो उनको देखता है और देखते ही उसके अंदर से ऐसे भाव सपना की उम्र करते हैं कि उसका सिर जमीन में झुक जाता है। जो झुक जाता है उसका सीधा धन टूट जाता है, उसका अहंकार टूट जाता है, अहंकार चूचूर हो जाता है। हमें क्या सीखा भगवान के पास जाने के बाद, उनके दिल चरणों में झुकने को हमें यह सीखा है कि वहां जाकर के अपने अहंकार को गलत कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। भगवान आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं, आपके श्रेष्ठ को ना हो जाए और ना हो सकता है, यदि होगा नहीं तो आप ही होंगे। मतलब हम भी आप जैसे ही तो बन जाएंगे, मतलब आप ही तो हैं। उन ज्ञान दर्शन की परिपूर्णता जो आप में है वही मुझ में होगी, तो मैं आप ही होऊंगा, मैं अलग तो नहीं हो सकता कुछ भी। जो भी यहां होगा वो ज्ञान दर्शन की पूर्णता वाला ही व्यक्ति यहां पर होगा। क्योंकि परमात्मा के समीप जाने के बाद व्यक्ति अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है और झुकने वाले व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है। हमने झुक करके शिक्षा प्राप्त कर ली कि भगवान के श्री चरणों के अपने अहंकार को दूर करने का हमारा प्रथम प्रयास हुआ करता है, अहंकार को गलाने का। जब तक वो हमारा मैं जीवित रहेगा तब तक चाहे हम परमात्मा के दर्शन भी नहीं कर सकते, परमात्मा को प्राप्त भी नहीं कर सकते। आपका सुना हुआ है, छोटी सी घटना सुनाकर के मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत पानी और तूफान आ रही थी, बरसात भी बहुत तेजी से हो रही थी, मूसलाधार बरसात के बीच और काले काले बादलों के अंधेरे में सूर्य अस्त चलकर पहुंच चुका था और एक रानी जंगल में भटक गया, अपने घर अपने गांव की तरफ आने के लिए था। जब अंधेरा होता है तो व्यक्ति अपने घर की तरफ नहीं आ पाता, कसाई अंधेरा होने पर शायद हम अपने घर की तरफ नहीं आ सकते हैं। जब चाहे कसाई अंधेरा हटेगा उस समय हमें अपने घर की याद आएगी और घर का रास्ता घर का द्वार हमें दिखेगा और हम घर में पहुंच जाएंगे। उस व्यक्ति के लिए ऐसा ही उनका अंधेरा होने लगा, लेकिन अंधेरे रास्ते में भी धीरे धीरे चलते चलते अचानक एक छोटी सी रोशनी दिख रही थी, उस रोशनी को देखते देखते वहां तक पहुंच गया। देखा कि एक झोपड़ी है और झोपड़ी के भीतर एक दीपक जल रहा है। जाकर के देखा कि इसमें कोई है तो उस बेचारे पानी के भिगे हुए आगे तूफान की आपत्तियों के बीच परेशान उस व्यक्ति ने द्वार पर दस्तक दी और कहा कोई है तो भीतर से आवाज आई, हां कौन? तो बाहर तो व्यक्ति कहता है कि दरवाजा खोलो। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं, बहुत जरूरी दरवाजा नहीं खुला तो पसंद में क्या आए दवाई अंदर कोई है मैं दरवाजा खोलो तो अंदर से आवाज आती है कौन? तो वो कहता है कि मैं। दो तीन बार दोबारा तो उसने अंत में इतने बिलकते हुए सुर में कहा कि अंदर यदि कोई हो तो
फकीर था, तो उस आदम को मैंने पूछा कि महानुभाव मैंने इतनी बार आवाज लगाई, आपने दरवाजा नहीं खुला, इसके पीछे कारण क्या? तो उस फकीर ने कहा कि मैं जो पूछ रहा था तो बदले में जो जवाब आ रहा था वो मैं कह रहा था, उस फकीर की गुड़िया के लिए भीतर मैं के लिए कोई स्थान नहीं होता है, यहां जो मैं जो लेकर के आता है उसके लिए कोई जगह नहीं मिलती है, यहां जो अपने मैं को विसर्जित करके आता है उसके लिए बहुत सारा स्थान इस कुटिया के भीतर मेरे भीतर में भी है। वह आदम तो समझ गया कि मैं मरकर जीवित रहेगा, तब तक मुझे इस कुटिया का दरवाजा नहीं खुला तो परमात्मा का दरवाजा कैसे खुल सकता है? परमात्मा का दरवाजा खोलने के पहले अपने मैं को विसर्जित करते हैं और श्रद्धा में टूट जाए तो कल्याण का द्वार भी हमारा आवास खुलेगा। इन भावनाओं के साथ मैं विराम लेता हूं। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज जी
मंगलमय मंगल करण
उनके प्रति कुछ थोड़ा सा करुणा भाव करें तो शायद शांति मिले। तो मैं दूसरे का उपकार करने का भी सोचा और दूसरे का उपकार भी किया और उपकार करके शांति पाई है। मैं जो नाम की तरह हूं कि हम जो तीन चीजें संभव करते हैं वैसे तीसरी चीज आज के समय में बहुत कम है। अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरे करने में ही हम सबका बहुत सारा समय निकल जाता है। 24 आवर्स में से अगर हम शांति से बैठ के सोचें तो हो सकता है कि लगभग 23 घंटे और मैं 50 मिनट और कह रहा हूं 23 घंटे के बाद कह सकता हूं लेकिन 23 मिनट है 50 मिनट और कहना पड़ेगा मुश्किल से
कदम भी चलना हो तो कदम तो एक ही चला शुरुआत का एक कदम एक कदम बीच के कदम दिल्ली नहीं जाते, लाभ आता है। उन्होंने आपसे कह रहा था एक घटना, एक युवक था एक गांव में और लगभग थोड़ी भी दूर 2 किलोमीटर दूर उसके एक बहुत पुराना मंदिर था। उसका नाम कई बार पता था, वो अपने बुजुर्गों को सुना करता था कि बहुत पुराना मंदिर है और बहुत बढ़िया मंदिर है, देखने लायक जगह है। और उसने कई बार मन बनाया, कई बार उसने प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। एक दिन तो उसने तय कर लिया कि कल सुबह होने से पहले और मैं यात्रा शुरू कर दूंगा, पांव पैदल चलना है, पहुंच जाऊंगा शाम होते ना होते वहां से लौट आऊंगा। और उसने सुबह जब सूरज भी निकला था तो एक लालटेन लेकर के पर पढ़ने का विचार किया, पर उसके दिमाग में एक चीज आई और बहुत लाजी बात नहीं होती। उसने देखा कि कलगी जो है वो मुश्किल से एक कदम आगे तक पहुंची दे पाती है और वो जो 2-3 किलोमीटर दूर इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है और उसकी चोटी पर वहां पहुंचना है तो इसकी की कलगी से क्या हो जाएगा। और वो वहीं पर हाथ में कलगी लिखे और विचार में डूब गया कि एक कदम की रोशनी है और सहना कदम अधूरे हैं, कैसे पहुंचूंगा। सूर्य उदय पर ही शायद चलना शुरू होगा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध हाथ में डालते हुए लाठी टेकता उसके सामने से गुजर रहा है। उसको हंसी आ गई। वृद्ध ने मुड़ करके देखा, क्या हंसते हो युवक। उसने कहा, बाबा कहां जा रहा था, मैं उस पेड़ की तरफ जा रहा हूं, लेकिन आपने सोचा कि रोशनी पर आपके पास क्या मुश्किल, एक कदम भी नहीं पड़ रही है, अंधेरा बहुत है, मैं तो इसी भी यहां ठहरा हूं। अब हंसने की बारी बंद की थी। उसने कहा, नौ युवक वो जो एक कदम रोशनी है उसमें बल्कि भी देखो, उस एक कदम रोशनी में तुम अपना एक कदम को रख करके देखो, वो रोशनी एक कदम से आगे हो जाएगी। इतना करने के बाद वो रोशनी से एक कदम और तुम्हें जितना चलना हो हर कदम पर, एक कदम रखने के बाद हर कदम पर तुम्हें वो रोशनी आगे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक कदम रखने की कोशिश करें, या आप जो भी एक कदम रखें मैं आपके साथ हूं, पर मैं आपकी तरफ से फिक्र नहीं रख पाऊंगा। आप अगर कदम रखेंगे का साथ दे। सबसे पहले तो आप यह मन बना लीजिएगा, जबकि आपने अभी अभी मेरे बिना कहे मेरी स्वीकृति है ऐसा कह दिया है, तो मेरी स्वीकृति अभी मैंने अपने मन से ले दी, वो तो कल सोचूंगा। अभी मेरे पास बाकी है, 5 दिन और रखे जाते हैं कि कहीं कोई ऐसी कंडीशन हो, आप मत सोचिए ना, वो मेरे सोचने की बात है। मैं तो मुश्किल में पड़ूंगा कि 5 दिन में क्या होगा। अगर आप एक कदम रखने के लिए राजी हैं तो आप पाएंगे किसको आप अपने साथ चाहते हैं वो आपके साथ होगा, जिसको आप चाहेंगे आप अपना पाएंगे और कोई मन करें ऐसा तक मेरे ख्याल से तो नहीं। जो फिर किसी ने हाथ नहीं छाने की शिकायत की है उसने यह नहीं देखा कि उसने हाथ बढ़ाया भी था कि नहीं बढ़ाया। हम हाथ ही नहीं बढ़ाते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि कोई थाम देगा, संभव नहीं है। हम चलना ही शुरू नहीं करते हैं और कोई आकर के हमें मंजिल पर पहुंचा देगा, ऐसा संभव नहीं है। हम अपना मन बनाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में हमें जरूर एक छोटा सा कदम रखना है जो हमारे गंतव्य तक ले जाने वाला होगा, और वो छोटा सा कदम कौन सा है, वो है श्रद्धा का कदम, वो है विश्वास का कदम। सुखी नहीं, सुखी नहीं चली थी सब प्रति कोई नहीं चाहता फिर न होते नरम सुखा वैसा पूछी के शक्ति उद्घाटन भगवती ही कथा मुक्ति कामस पुरुष हो मुक्ति द्वारा परिवर्तन मोह मुद्रा कबाट आपके पास है बहुत सारा ज्ञान रखे रखो शुद्ध ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान है आपके पास रखे रहो आचार्य भगवान कह रहे हैं सुखी पहुंचे पवित्र है आपका आचरण रखे रहो यदि भक्ति हो यदि आपके पास सच्चे देव पुरुष आपके प्रति और श्रद्धा और भक्ति नहीं की कोई नहीं है चाहिए नहीं है तो जो मोक्ष का द्वार है उस पर तो मोह का ताला लगाऊंगा वो खुलेगा क्या मोह मुद्रा दबाता उन दरवाजों पर मोह की मुद्रा लगी हुई है उस मोह को तोड़ने वाली चाहिए तो सिर्फ श्रद्धा के उस दर्शन मोह को तोड़ने वाली चाहिए तो सिर्फ उसके देव पुरुषार्थ की श्रद्धा के इसके बाद की जो यात्रा है वो तभी आसान होगी जबकि ये कदम हमारा रखा और श्रद्धा पर आपने बहुत कुछ पहले सुना पर एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहूं श्रद्धा पर कितनी आसान सी बात बिना विश्वास के लिए तो काम नहीं चलता विश्वास और श्रद्धा में कौन सा फर्क है कि हम आदमी पर विश्वास कर लेते हैं और जिसको हम परमार्थ भूत है उस पर जब हम विश्वास करते तो उसी को श्रद्धा कहते हैं और कोई बहुत बड़ी बात जब हम सांसारिक चीजों में विश्वास कर लेते हैं तो उसको विश्वास नाम देते हैं जब हम बड़ी विश्वास परमार्थ के क्षेत्र में करते हैं उसी को हम श्रद्धा देते हैं मैं एक बहुत सांसारिक का उदाहरण सुनाऊं और आने वाले दिनों में भी कई बार आप पाएंगे कि मैं बहुत सांसारिक बात आपसे करूंगा बहुत थोड़ा सा अध्यात्म जानता हूं जितना जी पाता हूं उतना ही जानता हूं मैंने कहीं पढ़ा था कि जो तुम खुद नहीं करते वो कहते क्यों या कि तुम जो कहते हो वो करते क्यों इतनी बात अपन कहेंगे इतनी बात अपन करेंगे जो हमारे बूते की है जिसको कि हम आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं हम पूरी तरह से कीचड़ में डूबे हुए लोग कमल के गीत गाते हैं कभी हम चार कदम चल के उस कमल को उस कीचड़ में से निकाल कर लाने की कोशिश नहीं करते हैं सिर्फ किनारे पर खड़े दलदल में खड़े और दूर दिखते कीचड़ के गीत गाने वाले लोग कभी कमल को प्राप्त नहीं करते कीचड़ का एहसास करना पड़ेगा कि हम कीचड़ में हैं तब उसके ऊपर उठने की कोई प्रक्रिया शुरू होगी हमें एहसास करना पड़ेगा कि कदम कदम पर हमारा जीवन अहंकार से गुजरता है बहुत दूर की बात नहीं है यहां से लेकर और शायद जो आपसे थोड़ा सा छोटा हो वो आपको धक्का देकर जरा सा आगे निकल जाए फिर देखिए क्या स्थिति बनती है क्या चीज अगर जीवन बन पाया है तो कौन सोच छोड़ व्यक्ति व्यक्ति के साथ विश्वास नहीं कर सकता वो परमात्मा को विश्वास कर सकता है मुझे तो नहीं लगता इसलिए कह रहा हूं कि पहले संसार में उत्तीर्ण होना पड़ेगा तब जाकर के परमार्थ का द्वार खुलेगा जो संसार के मामले में फेल है तो हम इसी कक्षा में पड़े रहेंगे उनको आगे वाली कक्षा में कौन भेजेगा बताइएगा पहली में पास होंगे बताऊंगा दूसरी में जाइएगा कैसे किलो जाइए अब प्रमोशन वोशन होता हो भैया तो उसका डिग्री यहां नहीं चलता रहता एक बड़ा सांसारिक चीज जिससे हमें समझ में आ जाएगी श्रद्धा कैसी मुझे एक व्यक्ति मिले थे कथैया और उन्होंने मुझसे कहा वो यही आपको बता दूं कि वो जैन धर्म विरासत में लेके पैदा नहीं हुए थे जैसे हम लोग पैदा हुए उनको विरासत में नहीं मिला था उन्होंने सुन करके पढ़ करके अपने जीवन में उसको फॉलो करने की शुरुआत की थी जो कि पिता से आसानी से मिल जाती है शायद बेटा उसकी उतनी कीमत नहीं कर पाता है हम लोगों के साथ भी यही हुआ वी आर जैन बाई एक्सीडेंट अचानक ऐसे हो नहीं अपने भीतर देखा जाए तो क्या हम आगे लेते आएंगे, ये तो आगे आने वाले दिनों में हम खुद अपने भीतर झांकने की शुरुआत करेंगे, देखेंगे। हमें किसी पर कमेंट नहीं करना है, हमें किसी की गलतियां नहीं देखनी है, हमें सिर्फ अपने जीवन के विकास के लिए अपनी कमजोरियों को हटाना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि महाराज ने बड़ा श्रद्धा की बात सुनी थी, लेकिन आपसे क्या कहें, किसी की बात सुनने से जो चीज होगी वो अचानक अपने ही अनुभव से होगा। मैंने कहा कैसा हुआ, उन्होंने सुनाया कि वो एक बार अपनी फैमिली के साथ और यात्रा पर निकले तो ट्रेन पकड़ना थी, स्टेशन पहुंचे तो एक अलग हुआ करता था, आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, थोड़ा कम हो गया होगा पर है, तो पहले थोड़ा ज्यादा हुआ करता था आदर, जीवन साथी उनकी साथ में थी, बेटा भी था, तो एक अटैची थी, अटैची क्या वो तो पेटी हुआ करती थी जिसमें मल्टी पड़ता बैठ भी जाए उसको तो टूटती उठती लेकिन आवाज नहीं जाए, वो पेटी पर बैठ गए और बोले मैंने अपना जो होल्डर था बैगिंग तो वो एक तरफ थोड़ी दूर रख दिया, उस पर हमारी जीवन साथी बैठ गई, दोनों के बीच बाहर की जरूर डिस्टेंस थी लेकिन भीतर से नहीं थी। आज बाहर से डिस्टेंस कम हुई है, भीतर की तो आप जानो, हम तो नहीं जानते। उनकी उस डिस्टेंस को फुलफिल करने वाला उनका बेटा था, कभी दौड़ के घर से मां के पास जाता था, कभी पिता के पास आया, वो जो बीच की दूरी थी उसको फुलफिल कौन करता था, वो बेटा करता था, और ये लगातार देखते थे और इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन आने और बेटे ने जिद शुरू की पिता के पास आकर के कि हमको तो नींद आती है और हम सोएंगे, तो उन्होंने पिता की हैसियत से उसको कहा कि देख अगर तू सो जाएगा ट्रेन आ जाएगी तो बैठ के चले जाएंगे तेरे को ले गए नहीं बता दे, ऐसा बोल दिया। तो उसने एक बार तो गौर से हमारी तरफ देखा, फिर उसने यहां कहा कि बेटा नींद को कौन आ रही है, मैं तो सोऊंगा, तो फिर मैंने बहुत जोर से डांट के उसको कहा कि तू सो रहा है तो सचमुच क्यों छोड़ के जाता हूं, अब की बार उसने आंख में देखा और पता नहीं चुपचाप से झुका के अपनी मां की तरफ चला। मैंने सोचा कि देखें अब क्या कहता है, तंत्र चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ है, जिंदगी के दौर में जाने क्यों, अब आवाज ही आवाज। मैं आपसे बात कर रहा था शायद पीछे तक के लोग नहीं सुन पा रहे हैं, तो एक राउंड निकट आइएगा शायद सुनाई पड़े। उन्होंने मुझे जो बताया कि मैं तो बेटा मेरे पास थे और मां के पास किया, इतनी दूरी तो नहीं थी कि एक दूसरे की आवाज भी एक दूसरे तक ना पहुंच पाए, पर आवाज बहुत गौर से वो सुनने लगी कि देखिए अब मां क्या कहती है और ये मां से क्या जाके कहता है, तो उसने कुछ नहीं, मां से भी जाके नहीं कहा कि अम्मा नींद आती है हम सोते हैं, तो अम्मा ने भी सुन लिया था कि पिता ने जो कहा है वो ही अपने को कहना है, तो अम्मा ने भी वही दोहरा दिया कि देखो बेटे देखो भैया अगर तुम सो जाओगे तो हम छोड़ के नहीं चले जाएंगे सोना। उसने मां की तरफ देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये जो कह रहे हैं मामला कुछ और है, उसने फिर से कहा कि अम्मा नींद तो आती है हम सोएंगे, ए भैया देखो तुम सो जाओगे तो हम सच्ची बता रहे हैं हम छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन आवाज में फर्क था, आंखों में फर्क था, हृदय में फर्क था, वो बेटा देखते देखते मां के ना करने पर भी चुपचाप गोद में सो गया। इन्होंने कहा कि उसी क्षण मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी भाषा में और उसकी भाषा में भले ही अंतर ना हो लेकिन भावों की भाषा में तो अंतर था, मेरे ऊपर उसने विश्वास नहीं किया पर मां पर विश्वास कर लिया, उसको इसका विश्वास था कह जरूर गई है छोड़ के जाएगी भाई सोने में कोई खतरा नहीं है। काश जैसा हम अपने सांसारिक क्षेत्र में इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं ऐसा ही जिन वाणी पर ऐसा ही
शास्त्र पर हमारा विश्वास होता तो शायद हमारे जीवन की कोई और दूसरी की स्थिति होती, जिस स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं उसमें तो यही लगता है कि हमारी श्रद्धा में अभी कहीं कोई कमी जरूर है। कई बार ऐसा हमें लगता है कि आते 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 पर लोग बीच में बन जाते हैं, जाता है थोड़ा सा दूसरा काम आ जाता है तो हम सब कुछ छोड़ने तैयार हो जाते हैं, सत्य योग विश्वास सब कुछ छोड़ने तैयार हो जाते हैं, थोड़े से दो दो पैसे थोड़े से अपने सांसारिक स्वार्थों को लेकर के। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी श्रद्धा का कदम अभी पूरी तरह से सशक्त नहीं हुआ है। ये श्रद्धा कैसी है? जैसे कि एक रास्ता जो हमने कभी नहीं देखा, जिस पर हमें चलना हो और जो चल चुके हैं वे कह रहे हैं कि रास्ता ठीक है, तो हम विश्वास ही करके उस पर चलना पड़ेगा क्योंकि हमने तो चल के देखा नहीं। जब तक हम उस पर चल के नहीं देखेंगे जब तक मालूम कैसे पड़ेगा कि ठीक जगह जाता है या नहीं जाता है। संदेह करना चाहें तो संदेह कर लें कि क्या पता जाता भी है कि नहीं जाता है। पर जब हम नए रास्ते पर जैसे चलने के लिए किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं कि व्यक्ति सज्जन मालूम पड़ता है, विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ऐसी तो एक श्रद्धा का क्षेत्र है जहां के लिए एक अनुभूत एक अपरिचित रास्ते पर चलना है। संसार का रास्ता तो हमने कई बार चलते देखा है लेकिन ये रास्ता जो संसार से कुछ अलग ही है उस रास्ते पर जाने के लिए तो हमें बहुत विश्वास से भर करके कदम रखना पड़ेगा। ये विश्वास ऐसा है जैसे कि पूरा का पूरा जीवन दांव पर भी लग जाए फिर भी हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं। ये श्रद्धा ऐसी है जिसमें सब कुछ, जिसमें सिर्फ मिलने का विश्वास है, मिला कुछ भी नहीं। कभी किसी के प्रति विश्वास हो जाए तो हम क्या करते हैं, अपना सब कुछ देने समर्पित करने तैयार हो जाते हैं। ये भी एक पूछते कि रिटर्न क्या दोगे, बाद में मिलेगा इतना भी हम नहीं पूछते हैं और अपने को पूरा समर्पित कर देते हैं। ये श्रद्धा ऐसी ही चीज है, परमार्थभूत श्रद्धा ऐसी ही चीज है जब अपना सारा संसार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये भी नहीं पूछते कि मिलेगा, ये भी छुड़ा रहे और मिलेगा दोगे क्या, ऐसी ये श्रद्धा है। क्या हम इस तरह की तैयारी इस श्रद्धा की कर पाएंगे? श्रद्धानम परमार्थानम आस्थानम तपोघनताम विमुना पूर्वस्थानम सम्यक दर्शनम स्मयम। ये और कोई चीज नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारे जैन दर्शन की, हमारे जैन धर्म की शुरुआत यहीं से है कि जब हम परमार्थ भूत सत्य देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा करते हैं, तीन मूर्ताओं से रहे आठ मदों से रहे आठ अंगों से युक्त होकर के ऐसा करते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम समझेंगे, पर मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि सत्य देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा और वो भी परमार्थ भूत, अपने स्वार्थ वक्त तो हमने कई बार सत्य देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा की होगी, परमार्थ से हमने कभी श्रद्धा नहीं। महाराज के पास जाकर के बैठेंगे, चार लोग देखेंगे कि भैया की बड़ी अप्रोच है, चलो बैठे आते हैं, क्या दिक्कत। ऐसे तो हम कई बार बैठे होंगे मंदिर में भी, हमने कई बार बड़े खास बात से पूजा की होगी इसलिए कि लोग मुझे धर्मात्मा समझेंगे और बिटिया की शादी में आसानी होगी, संभव है। बेटी की शादी में आसानी होगी, संभव है, ऐसा हमने कभी सोचा। शास्त्र की चार लाइनें भी पढ़ करके हमने ऐसा सोचा हो कि चार लोगों के बीच जरा मेरी शाख रहेगी, कि चार बातें धर्म की जान चाहिए, मैं अपना सिक्का जमा लूंगा। विद्वत्ता को भी हमने कई बार अपने स्वार्थ बस पैदा किया है, ऐसी श्रद्धा अपने स्वार्थ बस संसार की तो हमने कई बार करी होगी, लेकिन परमार्थ भूत श्रद्धा अब बहुत जरूरी है। और कैसी है वो परमार्थ भूत श्रद्धा, फिर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मुझे मालूम है कि हम सब लोग अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, मेरी बातें कुछ थोड़ी सी कठिन भी हो सकती हैं, पर छोटी छोटी सी घटनाएं शेष रह जाएंगी और वो शायद हमारे जीवन को कोई रास्ता देंगी। एक और बहुत छोटी सी घटना श्रद्धा पर और फिर अपन विश्राम लेते हैं। समय रोज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, पता नहीं हम कब ठीक समय पर पूरा करेंगे। हम आज तक चूकते रहे हैं, हमने समय पर अपना काम पूरा किया ही नहीं। कितने बार तीर्थंकर आए होंगे, तब समय था तब भी हम चूक गए, तब ना आज यहां बैठे हुए हैं, वरना विदेश क्षेत्र में कहीं जहां तीर्थ प्रवर्तन होता होगा वहां बैठते और वहां से कल्याण कर लेते। आप तो यहां से हम बात कर सकते हैं, थोड़ा सा एक कदम रख सकते हैं, पूरी मंदिर तक तो हम नहीं पहुंच सकते। फिर भी हम उस रास्ते, वो दूर देश अपने देश से और दूसरी जगह जाने वाले थे। बहन बहुत डरती थी जहाज में बैठने से, तब भाई ने समझा बुझाकर उसे तैयार किया कि चल तू, मैं भी तेरे साथ। और उस विश्वास पर वो दोनों जहाज में बैठे, पानी वाला जहाज था, महीनों यात्रा में लग जाएंगे। कुछ दिन ये गुजरे थे कि अचानक अनाउंस हुआ कि जहाज के लोग सावधान रहें, आंधी बहुत तेज है, जहाज के डूब जाने की संभावना बहुत है, सब अपने अपने परमात्मा का स्मरण करें, थोड़ी से घड़ियां हैं, शायद वो टल जाए। तो बहन तो बहुत घबराई, पहले ही घबराई थी, वो तो और घबराई कि अब तो जीवन ही शेष नहीं रहेगा। उसने सोचा कि भैया कहां चला गया, अभी तो केवी में था। बाहर खोजते हुए रात के देखा उसने कि वो तो सामने गेट पर बैठा हुआ है जहाज के। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे कहा शायद इसने अनाउंस में नहीं सुना। बात करके बोला पड़ती, उसने कहा तुमने कुछ सुना? उसने कहा सुना, क्या सुना? ये क्या है, यहाँ क्या जहाज डूब सकता? तो तुमको चिंता होता है मुझे, बिना मुझको कोई चिंता नहीं, तुमको डर भी नहीं लगता, उसको डर नहीं लगता, मुझे तो बहुत डर लगता है, इसमें डरने की क्या बात है? मेरे पास तो बहुत लगता है, तुम्हें कौन सा ऐसा विश्वास है जो कि डर नहीं होता? आप क्या बताए करें कि उसे कौन सा विश्वास है? उसने वहीं पर पास में गली में एक रस्सी उठाई, उसने ठंडा रहा और उछाल दिया बहन की तरफ, और वो बहन की गर्दन में कांटा फूंक गया। उसने खींचना शुरू किया, बहने कभी करते क्या हो तुम, बचपन से ही बदले गए और इतनी मुश्किल की अवस्था में भी तुम मेरे साथ इतनी हंसी कर गए और संभल रास्ता चला गया, और बहन जो इतनी हंसती चली गई कि क्या कर रहा है तू, फिर भी मना कर रहा। भाई ने कहा कि तुझे भाई नहीं लगता, तुझे हंसी आती है, मैं अगर जोर से कर दूं तो हंसती क्यों? उसने कहा कि तू जोर से कसेगा कैसे, मुझे विश्वास है कि तू मेरा भाई है, मुझे मारेगा क्यों? बोले बस मुझे विश्वास है कि अगर मेरे पास सच्चे गुरु का शास्त्र है तो कोई मुझे मार नहीं सकता है, कौन मुझे मार सकता है? और अगर सच्चे गुरु का शास्त्र सारी हुई है तो मैं कई कई बार मारता हूं, मारना संसार में कई कई बार पैदा होता रहूंगा, मेरे बार में सच्चे गुरु का शास्त्र शरण ले लूं, मुझे बार बार मरना नहीं पड़ेगा, कोई मुझे मार नहीं दे सकता। विश्वास सारा स्वरूप जो सभी देशों की बात हम व्यवस्था करते हैं, वही स्थिति हमारी बननी चाहिए। न ही लोग भय है, न पर लोग भय है, न आकस्मिक है, न मुक्ति है, न अंतराल है, न वेदना है, न मरण का कोई भय नहीं रहा शेष। अगर वो श्रद्धा हमारे पास आती है, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ये जो आप लोग हमेशा पूछा करते हैं कि हाउ टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, यहीं से शुरुआत करिएगा। मैं अपने युवाओं से, साथियों से कहूंगा कि वे अगर अपने भीतर कोई कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो जिस भाषा का आज तक हमने उपयोग किया था सम्यक दर्शन की भाषा को, उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में कहिएगा कि हम तो सिर्फ कहीं एक जगह नाखून देखना शुरू करते हैं, कहीं एक जगह अपनी बनाते हैं जो विकास पर है, उसकी तरफ हम झुकते हैं और झुक करके हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, पूरे विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा जीवन जरूर सफल होगा यदि हम ऐसी श्रद्धा को अपने जीवन में शुरू करेंगे। फिर अपन बैठेंगे, फिर बात करेंगे। ये श्रद्धा की बात अगर एक बार हमारे भीतर बैठ गई तो हमारा कल्याण होना ज्यादा दूर नहीं है। ये कहना बहुत कठिन है कि डोंट फियर, आई एम विद यू, पर मैं कहता हूं कि डोंट फियर, आई एम विद यू। आप शुरुआत करिएगा, देखिएगा जो शुरुआत करता है उसके साथ सब है। स्वीकृति देंगे तो फिर मैं भी आपको स्वीकृति दूंगा। ये एक प्रक्रिया होगी, कल बैठेंगे अपन फिर 8 बजे से और इस चीज को करेंगे। मुझे आपके रेगुलर विचार कर रहे हैं
दुख दोनों की करियो।